नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। इस बीच शिवसेना के बागियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे सख्ती बरतने के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से बागियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने एकनाथ शिंदे समेत 12 बागियों के खिलाफ व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके अलावा संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि एकनाथ शिंदे गुट जो हमें चुनौती दे रहा है, उसे ये महसूस करना चाहिए कि शिवसेना के कार्यकर्ता भी सड़कों पर नहीं उतरे हैं। वहीं जनसत्ता.com के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ शिवसेना के सिंबल पर चुनाव लड़े 40 विधायक का समर्थन और 12 अन्य भी उनके साथ हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके साथ गुवाहाटी में कुल 52 विधायक हैं। शिवसेना के बागी विधायकों का अगला कदम क्या होगा, इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद इस पर विचार करेंगे। पार्टी के सवाल पर शिंदे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी और वह अभी शिवसेना में ही हैं। 2002 में हुए गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि इस याचिका को जाकिया जाफरी की तरफ से दाखिल किया गया था। SIT की जांच रिपोर्ट को सर्वोच्च अदालत ने सही माना है। याचिका दायर करने वाली जाकिया जाफरी पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। इससे पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसकी सुनवाई जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस C.T. रवि कुमार की बेंच ने की। दरअसल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने SIT की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को CRPF के कमांडो की Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से CRPF की VIP सुरक्षा शाखा को सिन्हा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश मिलने के बाद दस्ते ने सिन्हा की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। अधिकारियों ने कहा कि सिन्हा जब भी देश में कहीं आएंगे जाएंगे 8 से 10 सशस्त्र जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। गौरतलब है कि राज्य के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। समझा जाता है कि सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसके बाद वह अपने लिए वोट मांगने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। देश में एक दिन में COVID-19 के 17,336 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,62,294 हो गई। देश में 124 दिन बाद संक्रमण के दैनिक मामलों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 13 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,954 हो गई। देश में COVID-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई, जो कुल मामलों का 0.20% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 4,294 की बढ़ोतरी हुई। अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.59% है, दैनिक संक्रमण दर 4.32%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 3.07% है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से सरकार को एक पत्र भेजकर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार सितंबर के बाद भी जारी रखती है या फिर किसी टैक्स में कटौती करती है तो इसका केंद्र की वित्तीय सेहत पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार की ओर से 2020 में कोरोना के कारण लगे पहले लॉकडाउन के समय शुरू किया गया था, जिसके बाद से सरकार लगातार इस योजना को आगे बढ़ाती जा रही है। मार्च 2022 में इसे सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी के लिए 2.07 ट्रिलियन रुपए आवंटित किए हैं, जबकि सितंबर तक PMGKAY के विस्तार से सब्सिडी का बिल लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले सहायता प्रदान करते हुए 2 विमानों से वहां 27 टन आपात राहत सामग्री भेजी। विदेश मंत्रालय के शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार अफगानिस्तान में 22 जून को आए शक्तिशाली भूकंप के कारण व्यापक तबाही एवं जान माल का नुकसान हुआ। बयान के मुताबिक भारत सरकार ने सबसे पहले सहायता प्रदान करते हुए 2 विमानों से वहां 27 टन आपात राहत सामग्री काबुल भेजी, जिसमें तंबू, स्लीपिंग बैग, कंबल, चटाई आदि शामिल हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।